शब्द सहजोबाई जी हरि ते गुरु की विशेषता। दोहा है पहले, हरि कृपा जो होए तो नहीं होए तो नाही, पै गुरु कृपा दया बिन तकल बुद्ध भै जाए।
हमारी भारतीय संस्कृति भक्ति के रंग से ओतप्रोत है। यहाँ पुरुषों ने भक्ति मार्ग में बहुत तरक्की की है, वहाँ हमारी स्त्रियाँ भी उनसे पीछे नहीं हैं। और हमारे अध्यात्मवाद के इतिहास में हमारी तीन पूज्य बहनों के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। उनमें से पहली हमारी आदरणीय और पूज्य बहन मीराबाई थी, दूसरी सहजोबाई थी और तीसरी दयाबाई थी। ये जो वाणी आज आपके सामने पेश की जा रही है, ये सहजोबाई जी की वाणी है। जैसा कि हमारे भारतीय अध्यात्मवाद के इतिहास में अक्सर हुआ करता है, इनके भी जीवन के मुतलिक हमें कुछ ज़्यादा हालात नहीं, केवल इतना ही मालूम है कि इनका जन्म राजस्थान में 1683 ईस्वी में दहरा गांव में हुआ। और शुरू से ही इनकी जो रुचि थी वो प्रभु की तरफ थी। शुरू से ही ये संत महात्माओं की तलाश में रहती थीं और अपना जीवन बड़ा नेक और पाक व्यतीत करती थीं। और इन्होंने 80 साल तक यानी 1763 ईस्वी तक भारतवासियों को अपनी अलौकिक वाणी से नवाजा। इनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि जब इनकी शादी तय हुई तो राजस्थान में ऐसा होता है कि शादी से पहली रात एक बोर गूंथने की रस्म अदा की जाती है। और ये रस्म जो है, जैसे हमारे शुमाली हिंदुस्तान में उत्तरी भारत में टीके की रस्म है, ऐसी रस्म होती है। तो जब ये अपना सर गुथवा रही थीं तो ये कहा जाता है कि उस वक्त के जो पूर्ण संत थे, संत चरणदास जी, उनकी दूर से इन्हें आवाज़ सुनाई दी, जो वो एक अपना दोहा गा रहे थे। और वो दोहा ये था कि जाना है रहना नहीं, जाना विश्वे बीस, ऐसे अल्प सुहाग पर काय कुथावे शीश। कि ये जो दुनिया है ये तो फानी है, ये तो नाशवान है, ये तो पेरिशेबल है, ये तो मार्टर है, ये तो जावेदानी नहीं है, अमर नहीं है, ये तो चंद रोज़ा कहानी है। और ये हमारी अपनी दुनिया नहीं है, तो अगर ये अपनी दुनिया नहीं है तो फिर इससे लगाव कैसा, इससे अटैचमेंट कैसी। और ये 100% सच है कि हमने इस दुनिया को छोड़ के जाना है। जैसा कि गुरबानी में कहा गया है कि ये जो हमारा ज़ाहरा जीवन है, जीना है, ये झूठ है और मरना सच है। इसी बात को उन्होंने इस तरह से बयान किया कि जाना है रहना नहीं, जाना विश्व पीस। कि ये तो पक्की बात है, ये मुसलमान अमर है, 100% सच बात है कि हमने इस संसार को छोड़ के जाना है। और ऐसे अल्प सुहाग पर काय गुथावे कीस, कि ये जो अब सुहाग है, ये जो हमारा जाहिरी सुहाग है, दुनियावी सुहाग है, ये तो चंद वर्षों की बात है। हमारी जिंदगी का जो देह है वो तो जैसा मीराबाई ने कहा है कि मीराबाई सदा सुहागन बन पाए आप नश, कि ये जो तेरी शादी हो रही है तो जो इसमें खचत हो जाएगी, इसके लिए जो शीश गुंधा रही है तुझे छोटे सुहाग के लिए नहीं घिस अपना शीश गुंधाओ। अगर शीश गुंधाना है तो जो हमेशा का सुहाग है उसके लिए अपने शीश गुंधाओ। और ये महापुरुष जब भी होते हैं इनका तो अपने अंदाजे ब्याह होता है, हर महापुरुष का अपना रंग होता है, अपनी बू बास होती है, अपना अंदाजे ब्याह होता है। और जब हमें ये सही रास्ते पे लाना चाहते हैं तो कोई ना कोई ऐसी अलौकिक घटना हमारे जीवन में हो जाया करती है, हो क्या जाया करती है, ये कर दिया करते हैं। और जब ये उनका दोहा सहजब भाई जी ने सुना तो वो उठ खड़ी हुई गुरु की तलाश में, और उन्होंने कहा कि अब अगर मैंने किसी सुहाग का सोचना है तो मैंने सदा के लिए सुहाग का सोचना है, और जो मेरी ज़िंदगी का ध्येय है अपने आप को जानना और प्रभु को पाना, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन, खुद शनासी और खुदा शनासी, मैंने उसी रास्ते पर चलना। तो ये कहा जाता है कि वो जहाँ अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के दरमियान बैठी हुई अपने जो केस थे वो गुंथा रही थी, वो उठ खड़ी हुई और फिर सारी ज़िंदगी उन्होंने प्रभु के रास्ते में गुजार दी, और 80 साल की उम्र तक वो जो हिंदुस्तान के बासी थे, राजस्थान में रहने वाले, और ये जिक्र आता है कि वो दिल्ली तक भी वो तशरीफ़ लाई थी, तो उन्हें प्रभु के गुणगान से वो नवाजती रही। तो ये है हमारी उस भगत बहन का, जिसका मैंने थोड़ा सा उसके जीवन का वर्णन अभी किया है। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनने अपनी रचनाओं में दोहे भी कहे हैं, चौपाइयाँ भी कही हैं, पद भी कहे हैं, राग रागनियाँ भी हैं, कुंडलियाँ भी हैं और छंद भी हैं उनमें। और जो एक विशेष रंग है इनकी वाणी का वो है भक्ति और वैराग। भक्ति और वैराग से इनकी वाणी ओतप्रोत है, और गुरु भक्ति का अंग तो विशेष तौर से हम सबके लिए एक पथ दर्शक है, एक रास्ता दिखाने वाला है। तो ये जो वाणी आपके सामने पेश की जा रही है, इसने अपने गुरु की उन्होंने महिमा की है, और ज़ाहरा तो उन्होंने तुलना की है परमात्मा की और गुरु की, मगर इसमें उन्होंने अपने गुरु की महिमा ही की है, उन्होंने अपने गुरु की महानता को अपने अंदाज में बयान किया है। क्योंकि असल में तो गुरु और प्रभु परमात्मा एक ही होता है, जो हमें पहले गुरु के रूप में मिलता है वही अंत में हमें प्रभु के रूप में मिलता है, क्योंकि जो गुरु होता है वो प्रभु रूप होता है। और कबीर साहब के मुतल्लिक ये कहा भी जाता है कि उनकी एक शिष्या ने जब जाके देखा कि सचखंड में वो खुद ही विराजमान थे, तो उन्होंने कहा कि आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने जवाब दिया कि पहले शायद तू हमारा एतबार नहीं करता। तो जो गुरु होता है वो तो प्रभु रूप होता है, खुद प्रभु होता है, चलता फिरता खुदा होता है, मगर इनका अंदाज जो है बड़ा लतीफ़ अंदाज है, बड़ा सुबक अंदाज है, बड़ा सतल अंदाज है। तो इसमें इन्होंने गुरु की और परमात्मा की तुलना की है। तो ये बयान जो है सिर्फ इम्तियाजी बयान है, देखिए किस खूबसूरती से बयान करती हैं, और इसे जिस सेंस में उन्होंने बयान किया है उसी सेंस में समझने की कोशिश कीजिए। यह बड़ी सटल बड़ी लतीफ बानी।
हरि कृपा जो होए तो नहीं होए तो नाहे, पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्ध भै जाए।
अब जो बयान कर रही हैं कि जो गुरु है वो बहुत बड़ी बरकत है। हमारे हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, ए लिविंग मास्टर इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। क्यों? क्योंकि जो प्रभु है उसकी एब्सोल्यूट फॉर्म में तो किसी ने उसे देखा नहीं। हम तो जिस फॉर्म में प्रकट होता है उसी में उसे देखते हैं। जो क्राइस्ट पावर है, जो गुरु पावर है, वो तो हमेशा जारी और सारी रहती है, मगर हम तो जिस पोल पे वो काम करती है उसी पोल को देखते हैं, उसी पोल से हमारा संबंध होता है और उसी पोल के जरिए हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं। और यही हर संत और महात्मा ने अपने अपने अंदाज में कहा है कि परमात्मा तो पहले भी मौजूद था मगर हमें परमात्मा की खबर ना थी, हम उसके मतलब कुछ नहीं जानते थे, हम तो मूढ़ थे, हम तो अंधे थे, हम तो बहरे थे। परमात्मा के एब्सोल्यूट फॉर्म का तो जिक्र ही क्या, हम तो जो उसका रूप है ज्योति का और श्रुति का, हम तो उसे भी नहीं जानते थे। और अगर हमने प्रभु को किसी थोड़े से रंग में देखा है तो वो हमारे गुरु की देन है। तो गुरु एब्सोल्यूट फॉर्म में तो पहले भी था और अब भी है, उसे तो हम नहीं देख पाए। और उसका तो वही अंग हम देख सकते हैं जो हमें अपना गुरु कृपा से दिखाए, मगर हमने अगर किसी को देखा है तो वो अपने सतगुरु को देखा है, और जिसने प्रभु को पाया है वो सतगुरु के द्वारा पाया है। क्योंकि ये जो सृष्टि है हमारी, इसकी जो रचना है वही इसी प्रकार से हुई है कि पहले प्रभु अपनी एब्सोल्यूट फॉर्म में था, ऑल कॉन्शियसनेस था, फिर उसे ख्याल हुआ कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो ये सृष्टि बनी। उसने ज्योति और श्रुति की दो सूरतें अख्तियार की, और फिर बाद में जब काल से उसका मायदा हुआ तो उसमें पैक्ट में ये कंडीशन थी कि अगर प्रभु ये चाहे कि किसी आत्मा को अपने साथ मिला ले तो वो इंसानी चोला धारण करके आए और यहाँ आके सत्संग के द्वारा उसे अपने साथ मिलाए। तो ये तो प्रभु की देन है, उसकी कृपा है, उसकी ये बरकत है कि वो इंसानी चोला धारण करके हमारे लिए आता है और आके हमें प्रभु तक ले जाता है। अब हमने तो प्रभु को देखा नहीं, परमात्मा को देखा नहीं, हमने तो गुरु को ही देखा है। इसलिए जो हमारा आज है, जो हमारा अंत है, हमारा तो सब कुछ गुरु ही है। और एक शिष्य के लेवल से अगर रूहानियत को एक लफ्ज़ में छोड़ा जाए तो वो लफ्ज़ है गुरु, वो है मुर्शिद। क्योंकि हमें तो जान देने वाला भी वही है, अंधेरे में रोशनी करने वाला भी वही है, प्रभु के रास्ते पर चलाने वाला भी वही है, वही हमारा असली साथी है, वही असली संगी है। तो देखिए अपने अंदाज में किस खूबसूरती से बता रहे हैं।
हरि कृपा जो होए तो नहीं होए तो नाहे, पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए।
अब ये कहती हैं कि मेरी तो जो बुद्धि थी वो ख़राब हो गई थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था। और वैसे भी जो प्रभु है वो तो लामहदूद है, मेरी बुद्धि महदूद है, मेरी जो विजडम है सो कॉल्ड वो तो मेरे मन का खेल है, और जो मेरा देश है वो तो मन से बहुत परे है, वो तो हद्दों से परे है। तो ये मेरी जो बुद्धि थी उसके बुद्धि की तो बात ही नहीं थी। और अगर मैंने अपने देश के मुतल्लिक कुछ जाना, अगर मैं तीन गुणों से पार पहुंची तो ये मेरे गुरु की देन थी। तो इसीलिए कह रही हैं कि मुझे जो कुछ मिला है अपने गुरु की कृपा से मिला है। अगर मुझ पर गुरु कृपा नहीं करता, अगर गुरु मेरे अवगुणों की तरफ नज़र डालता तो मैं तो कभी उसके काबिल नहीं थी। और ये गुरु की देन है, उसकी रहमत है, उसकी बरकत है, उसकी मेहरबानी है कि उसने जितने भी मेरे अवगुण थे, जितने भी मेरे गुनाह थे, उन सबको नज़रअंदाज किया और उसने जो अपनी बख्शिश का खजाना लेके आया था उसी से अपना सरोकार रखा और अपनी बख्शिश के सहारे ही उसने मुझे अपना लिया। मैं तो गुनाहों से लथपथ थी, मैं तो बेबस थी, मैं तो विवश थी, मैं तो सिसक रही थी, बिलक रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी और अंधेरा ही अंधेरा था मेरी आँखों के सामने। और मैं तो ये जो बुद्धि का अंधकार था इसमें मैं तो खो गई थी, मगर ये मेरे गुरु की देन है कि उसने मेरे गुनाहों की तरफ नज़र ना डाल के मुझे अपना लिया। क्योंकि ऐसी हस्तियाँ जब आती हैं वो तो हम जैसे गुनाहगारों को अपनाने के लिए आती हैं, और ये उसकी दया है कि उन्होंने हमें अपना लिया। इसलिए मेरे लिए तो जो कुछ है वो अपना गुरु ही है, और इसीलिए ये एक कंपैरेटिव बयान है उनका।
हरि कृपा जो होए तो नहीं होए तो नाहे।
अब ये वही अंदाज है जिसमें मैंने एक दफ़ा शेर एक कहा था कि खुदा अगर ना खुदा होगा तो होगा, मुझसे क्या मतलब, मेरी कश्ती का सामन ना खुदा मालूम होता है। तो ये कभी कभी कोई ऐसा वक्त आता है कि जब जो शिष्य होता है वो ऐसे अंदाज में बात कर जाता है, मगर इसका ये मतलब नहीं होता कि वो कोई अपमानजनक बात करता है, वो तो अपनी मस्ती के आलम में कह जाता है। और जैसा गालिब ने भी कहा है कि मैं जुनून में क्या कुछ कह रहा हूँ, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। तो ये है आलम है, अपनी मस्ती सरमस्ती की आवाज़ है। तो अब वो ये कहती है कि भाई ठीक है, मेरे लिए तो जो कुछ है वो अपना सतगुरु ही है।
हरि कृपा जो होए तो नहीं होए तो ना।
अब ये मस्ती की ललकार है कि भाई हरि की कृपा हो जाए तो बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं हो जाए, नहीं हो जाए तो भाई उसकी अपनी मर्जी है, हमारा जोर तो है नहीं उसके साथ। मगर मेरे लिए तो मेरे गुरु का जो दरवाज़ा है वो काफ़ी है, मैं तो अपने गुरु के चरणों में अपना सर लाख लाख बार झुकाती हूँ।
हरि कृपा जो होए तो नहीं होए तो नाहीं, पै गुर कृपा दया बिन सकल बुद्धि बजा।
अब देखिए कि मुझे जो बात मस्त है वो है अपने गुरु की कृपा, गुरु की नजर करम चाहिए। और फिर देखिए कि यहाँ जो जोर है वो गुरु की कृपा पे है, गुरु की दया पे है, कर्म पे नहीं है, वो नजर कर्म पे सारा एम्फसिस दिया गया है कि हम कर भी क्या सकते हैं। ये तो जब गुरु की नजर कर्म होती है तो तभी हमें उबार मिलता है, और जब वो उबार मिलता है तो हमसे कोई ऐसा एक्शन होता है जो प्रभु के रास्ते में हमें ले जाता है। और फिर जब थोड़ा सा अमल करते हैं तो गुरु की एक और ज़िंदगी उबारने वाली हमें नज़र मिलती है, वो पहली आग बनती है जो उसके बाद दूसरी आग बन जाती है। और इसी तरह से ये छोटी छोटी गुरु की नज़र करम का और हमारे अमल का ये आज का जो सिलसिला है जारी रहता है और आखिर में पूरा सर्कल बन जाता है, दायरा बन जाता है। तो यही बता रहे हैं कि ये तो गुरु की दया है, और प्रभु की मैं इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, सब कुछ है, मगर मेरे लिए जो कुछ है वो तो मेरा अपना गुरु है। मुझे जो कुछ मिला है गुरु के ज़रिए मिला है, ये जो मैंने अपने आप को पाया है और पाने से पहले मैंने अपने आप को खोया है, और वो भी पहले मैंने अपने आप को गुरु में खोया है। रूहानियत की यही तो स्टेजेस है ना, पहली स्टेज जो है वो फनाफिल्ला की स्टेज है, फनाफिल शेख की स्टेज है कि हम गुरु में लीन होते हैं। तो पहले तो गुरु ही सब कुछ है हमारे लिए, और अंत में भी गुरु ही सब कुछ है, मगर गुरु जो है वही प्रभु का जो है प्रभु की फार्म इख्तियार कर लेता है। बात तो यही है, और इसी को बड़ी खूबसूरती से बयान कर रही हैं कि भाई मुझे तो अपने गुरु की नज़र करम चाहिए, उसकी दया चाहिए, उसकी मेहरबानी चाहिए, उसका कर्म चाहिए, और मेरे लिए सब कुछ वही है। मैं तो सबसे ऊपर अपने गुरु को मानती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में प्रभु तो पहले भी था। प्रभु से कांटेक्ट मुझे किसने दिया? जब तक मैं गुरु के चरणों में नहीं पहुंची, या असली मानों में जब तक गुरु ने मुझे अपने चरणों में नहीं बुला दिया, मैं तो प्रभु के मतलब तो कुछ जानती नहीं थी। मुझे जो कुछ ज़िंदगी में नसीब हुआ अपने गुरु की नजर कर्म से हुआ, इसलिए मैं अपने गुरु को लाख लाख बार मैं प्रणाम करती हूँ, और मैं जो समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का दाता जो है गुरु है, और प्रभु का दाता भी जो है वो गुरु है, क्योंकि गुरु के जरिए ही मुझे प्रभु मिला है। इसलिए मैं हर वक्त अपने प्रभु की खुशनुदी के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसकी नजर करम के लिए मैं हर वक्त प्रार्थना करती रहती हूँ, और यही मेरी प्रार्थना है कि गुरु जो है वही आद है मेरा, वही मेरा अंत है, वही मेरी ज़िंदगी का जियादान देने वाला है, वही जो है वही मेरी जान की जान है, वही मेरे प्राणों का प्राण है, मेरा सब कुछ गुरु है। और प्रभु को मैंने पाया है तो गुरु के जरिए पाया है, इसलिए मैं सबसे पहले अपने गुरु को मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। फिर पढ़
हरि कृपा जो होए तो नहीं होए तो नाए, पै गुर कृपा दया बिन सकल बुद्धि बैजा।
क्योंकि जब मेरा गुरु नहीं था तो मेरी ये जो बुद्धि है ये कोई काम नहीं करती थी, ये तो उल्टी तरह मुझे ले जा रही थी। मगर जब इसे सतगुरु की छोह मिली, मुर्शिदे कामल की छोह मिली, तो मेरा कायाकल्प हो गया, और पहले तो मैं गुरु में लीन हुई और फिर मैं प्रभु को पाने वाली हो रही। इसलिए मैं पहले अपने सतगुरु को बार बार नमस्कार करती हूँ। इसी बात को गुरबानी में इस तरह से बयान किया गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू हुआ है, भले हारी गुरु आपने जिस गोविंद दिया मिले।
राम तजूं पै गुरु ना बिसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं।
देखिए ये भी इम्तियाजी बयान है, ये एक मस्त की आवाज है, जो सर मस्त है, जो सरशार है। मस्ती के आरंभ में जो शिष्य है बहुत कुछ कह जाता है। अब ये कह रहे हैं कि अगर कहीं मुझे दो अल्टरनेटिव मिल जाएं कि मैंने गुरु को छोड़ना है या मैंने प्रभु को छोड़ना है, तो मैं क्या करूँगी? कह रहे हैं मैं तो अपने गुरु के चरण पकड़ लूँगी, क्योंकि गुरु के चरणों में प्रभु के भी चरण हैं, और गुरु के चरण तो मैं पकड़ सकती हूँ, प्रभु के चरण तो मैं सीधे नहीं पकड़ सकती। किस खूबसूरती से बयान किया है ये देखिए, और उसका जो असली इम्पोर्ट है, इसकी जो असली इसके मानी है उसे समझिए कि जब मैंने गुरु के चरण पकड़ लिए तो मैंने परमात्मा के चरण पकड़ लिए, क्योंकि गुरु का जो हाथ है वो परमात्मा का हाथ है, गुरु की जो आँखें हैं वो परमात्मा की आँखें हैं, गुरु के जो चरण हैं वो प्रभु के चरण हैं। इसलिए मैं तो अपने गुरु का मैं आदर करती हूँ, क्योंकि गुरु के चरणों में परमात्मा के भी चरण हैं। अब ये इम्तियाजी बयान का तरीका है, एक ये मस्त की आवाज़ है कि अगर मुझे दो अल्टरनेटिव मिले और एक तरफ प्रभु हो एक तरफ गुरु हो, तो मैं किस तरफ देखूँगा? तो वो कहते हैं कि भाई मेरा सर जो है मेरे गुरु के कदमों में पहले झुकेगा। तो यही आइडिया मैंने अपने एक और शेर में भी इस तरह से बयान किया गया है कि मैं मंदिर के अंदर गया हूँ, मेरा महबूब भी मंदिर के अंदर है। एक तरफ तो एक पूजने वाला बुत है, एक तरफ मेरा महबूब खड़ा है। मैं अब किस तरफ देखूं, मेरी नज़र तो मेरे महबूब के कदमों में जाती है। वही बात जिसे बुल्ले शाह ने कहा था कि नमाज पढ़ा कि तैमल तक का मैंने काबा भूल गया। ये अंदाजे ब्याह है हर एक अपना अपना। तो अब कितनी खूबसूरती से वो बयान कर रही हैं कि अगर मुझे ये अल्टरनेटिव मिल जाएगा तो पहले तो मैं अपने गुरु के चरणों में अपने शीश को रख दूँगा, क्योंकि गुरु के जरिए ही मुझे प्रभु मिला है और जो गुरु है वही प्रभु है। तो ये इस इम्पोर्ट में जो इनकी सारी वाणी है, इनका सारा शब्द है, बड़ी मस्ती से भरा हुआ है।
राम तजू पे गुरु ना बिसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहार।
कहते मेरे लिए तो मेरा आद मेरा अंत मेरी जान मेरे प्राण सब कुछ मेरा गुरु है, क्योंकि मैं गुरु के चरणों में पहुंची तो तभी वो मुझे प्रभु से मिलाने के लिए उसने मेरा इंतजाम कर दिया। तो मेरे लिए तो सब कुछ मेरा गुरु ही है, वही मेरी ज़िंदगी है। और वैसे भी जो गुरु होता है न ओटियों की ओट होता है न आश्रयों का आसरा होता है, क्योंकि गुरु के जरिए हमें हमेशा का जो है असली आसरा मिलता है, असली ओट मिलती है। तो इसलिए मैं बार बार अपने गुरु को नमस्कार।
हरि ने जन्म दियो जग माहि, गुरु ने आवागमन छुटाए।
अब ये एक इम्तियाजी बयान कर रही हैं, इसमें देखिए कि हम सब कहते हैं प्रभु ने ये सृष्टि क्यों रची। हम सब अपने दिल में यही सवाल करते हैं, इसी तरह से इसी पृष्ठभूमि में ये अपने मस्त अंदाज में अब प्रभु की परमात्मा की और अपने गुरु की तुलना कर रहे हैं। कहने लगे देखिए ये एक अचरज बात है, प्रभु ने अपनी ओन विजडम में ये सृष्टि रच दी। मैं तो प्रभु के साथ मिली हुई थी, मैं प्रभु से एकमिक थी, मैं तो हमेशा का आनंद मान रही थी। यही हमारी सृष्टि के मतलब कहा जाता है ना, कि पहले प्रभु अकेला था, फिर उसको ख्याल हुआ कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। एक लौर उठी और उसने दो सूरतें इख्तियार की, एक ज्योति की एक श्रुति की। उसके बाद आत्माएं उससे अलग-अलग अलग-अलग जुदा होती चली गई। तो अब वो यही कहती हैं कि देखिए प्रभु ने क्या किया, मैं प्रभु के साथ मिली हुई थी, हमेशा का आनंद मान रही थी, उसने मुझे अपने आप से जुदा कर दिया। और जुदा करके उन्होंने मुझे ये इंसानी जामा दे दिया, और इंसानी जामे के बाद 84 लाख जिया जून बता दी जिसमें मैं चक्कर काट रही। तब जब वो तुलना कर रहे हैं, इसमें देखिए इसमें बड़ी खूबसूरती से बड़ी सटलती से शायराना खूबसूरती है इसमें, जिससे वो ये बात कर रही हैं। क्या बताती हैं कि प्रभु ने क्या किया, मैं तो आनंद मान रही थी, हमेशा की मस्ती और सरसारी में मैं झूम रही थी, मैं प्रभु से एक मिक्स थी, मेरा तो कोई सवाल ही नहीं था, मेरा तो सदा का स्वाग था। मगर प्रभु ने क्या किया, मेरे लिए एक अमतान रख दिया, मुझे अपने आप से जुदा कर दिया। जैसा कि मौलाना रूम ने कहा है कि बिश्नो आज नै तू हकायत मी कुनद व जुदाई हा शिकायत मी कुनद। अब ये भी वही अपनी जुदाई का किस्सा बयान कर रही हैं, मगर अपने अंदाज में, इनका अंदाज अनोखा है। कहती हैं अब मैं तुलना कर रही हूँ कि प्रभु ने क्या किया, मैं तो प्रभु के साथ मिली हुई थी, मैं तो प्रभु की गोद में रहती थी, उससे एकमिक थी, ना ये कोई हिजर की दास्तान थी, ना कोई दुख का किस्सा था। प्रभु ने क्या किया, मुझे अपने आप से छोड़ दिया, ये मेरी जो हिजर की दास्तान थी उसका आगाज़ कर दिया। उसने अपनी विजडम में किया, ठीक है, मगर ये मेरे लिए तो दुखदाई बन गया। प्रभु ने तो मुझे दुख में डाल दिया, अमतान में डाल दिया, 84 लाख जिया जून का चक्र है इसमें मुझे फंसा दिया, और ये चक्र व्यूह ऐसा है कि जिससे निकलना आसान नहीं है, मैं तो मारी मारी फिरती रही। और मेरे गुरु ने क्या किया, ये जो चक्र था इसे ख़त्म कर दिया, ये जो मेरी दास्तान थी हिजर की जुदाई की, ये जो मेरा रोना था अरबिक का सिसकना था बिलकना था, इसे ख़त्म कर दिया और मुझे वापस प्रभु में मिला दिया। अब देखिए मेरे लिए किसकी इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है, किसकी महत्ता ज़्यादा है। एक ने तो मेरे दुख का एक समान बता दिया, ये ठीक है प्रभु का अपना खेल है, मैं मानती हूँ प्रभु का खेल है, मैं प्रभु का आदर करती हूँ सम्मान करती हूँ, मगर उसने खेल जो इतना ये रचा है, ये जो सृष्टि बनाई है, तो इसका मुझ पे अब जो मेरी इंडिविजुअल हालत है, व्यक्तिगत हालत है, उस पर मेरे पे इसका क्या असर है कि मैं 84 लाख दिया जुर्म में मैं तो धक्के खा रही हूँ, मैं तो अपने प्रीतम से दूर हूँ, मैं तो हर वक्त बिरह में जल रही हूँ, ये तो मुझे प्रभु ने यही दी ना देन। अब देन कहिए, मैं तो देन ही कहूँगा कि प्रभु ने क्या किया मेरे लिए अच्छी बली, मैं तो अपनी स्वाग मान रही थी, उसने मुझे जुदा कर दिया है। ये बिरह का आलम जो है, ये जो 84 लाख दिया जून है, ये किसने मुझे दी है? प्रभु की मौज से ही, मौज तो है मैं मानती हूँ, प्रभु का खेल से ही, अटरच खेल है ये भी मैं मानती हूँ, मगर इस पर मुझ पर क्या असर है? मुझ पर तो इसका ये असर है कि मैं प्रभु से दूर हो रही हूँ, अब मैं 84 लाख जिया जून में मैं भटक रही हूँ। तो प्रभु ने तो मुझ पर ये कर्म किया, प्रभु का तो खेल ही सही, मगर बात यही है किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी, बात तो यही है ना कि भाई प्रभु का तो खेल हो गया, मेरे लिए तो मुसीबत हो गई, मेरे लाख तो ये करोड़ों वर्षों का, अरबों वर्षों का, खरबों वर्षों के लिए ये एक रोने का सामान पैदा हो गया, तड़पने का सामान पैदा हो गया, और वो प्रभु है, मैं तड़प रही हूँ, वो खुश है, वो तो खुशी मनाता, और उसका तो जो भी हुआ जब प्रभु ने ये संसार शुरू किया तो उसका नेट रिजल्ट क्या हुआ? प्रभु तो पहले उसका चाहने वाला कोई नहीं था, वो अकेला था, प्रभु को चाहने वाले लाखों मिल गए, करोड़ों मिल गए, और मेरे से मेरा प्रीतम छूट गया। कैसा एक अजीब ये खेल है कि प्रभु ने अपनी तो जो भी उसके मन में आया प्रभु ने अपनी कर ली, अपना खेल रचा दिया। क्योंकि यही बात है, कहते हैं कि सबसे पहला जो आशिक था, काफिर था, वो प्रभु खुद था, क्योंकि उसे ये ख्याल हुआ कि मैं अकेला बैठा हूँ, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे प्यार करे, क्योंकि ये तो सारी प्यार की कहानी है। उसने ये प्यार करने वाले दो चार पहले बनाए, जब उसे और लुत्फ आया तो उसने और जो संसार बना दिया। प्रभु ने तो हमारे लिए यही किया ना। अब देखिए अब मेरी क्या हालत है, प्रभु का तो खेल हो गया और मेरी जान गई, किसी की जान गई, आपकी अडा ठहरी, तो इन अदाओं को जानने शबाब रहने दे। तो यही हालत है हमारी आत्माओं की, जो है यही सी हालत को वो बयान कर रही हैं, उनका अंदाज़ बयां अपना कि प्रभु ने तो मुझे ये 84 लाख दिया जो उन्होंने फंसा दिया, मगर गुरु ने क्या किया? देखिए प्रभु खुद गुरु के फॉर्म में आया, और जैसा कि हमारे हजूर पुनूर और हमारे मुर्शिद आज़म हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि वो मल मूत्र का चौला लेके हमारे लिए संसार में आता, वो खुद इस संसार में आया, इंसानी जामा पहना, हमारे लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई। और अगर आप संत हिस्ट्री देखिए तो वो शहादत की हिस्ट्री है, और जब भी जो संत महात्मा आते हैं वो तो हमारे लिए आते हैं, अपने लिए नहीं आते। तो ये बता रहे हैं कि भाई प्रभु ने हम पे जो कर्म किया, हम उसका शुक्राना तो ये करते हैं, मगर अब हमारे लबों पे हमारी जान आई है, हमारी जो जान पे बन गई है, हम पे 84 लाख जिया जून में फंसे हुए थे, बड़ी मुश्किल में थे, और अगर किसने हमारी यहाँ दस्तगीरी की, किसने हमारे हाथ को पकड़ा, किसने इस जो हम जंजन में फंस गए थे उसे हमें निकाला, ये तो हम पे अपने गुरु ने निकाला, गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा। प्रभु ने तो छोड़ दिया था, मझदार में छोड़ दिया था, लहरों में छोड़ दिया था, प्रभु ने तो यही किया ना कि यहाँ जैसा कि ख्वाजा हाफिज ने कहा है कि एक तख्ते पे हमें बांध दिया, टांगे भी बांध दी, हमारा जिस्म भी बांध दिया, हमारा सब भी बांध दिया, और लहरों में छोड़ दिया, और फिर ये कहा कि दामन तरमुकुन होशियार बाश। अब जब पानी में ऊंची नीची लहरें आएंगी तो कैसे हो सकता है कि हमारे कपड़े गीले नहीं हों, मगर गुरु ने हमारी मदद की और गुरु ने हमें वापस अपने मुकाम पे पहुंचा दिया। इसलिए मैं तो गुरु का बारंबार उसी का गुनावाद करती हूँ, उसी को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। फिर पढ़ो,
हरि ने जन्म दियो जग माहे, गुरु ने आवागमन छुटा।
ये 84 लाख दिया जून का जो चक्र है, अब देखिए ये प्रभु का खेल है, प्रभु का तो खेल है, पर मेरी जो जान पे बन गई, मैं अब बट्टी भी बनी, पौधे भी बनी, बिच्छू भी बनी, सांप भी बनी, परिंद भी बनी, जानवर भी बनी, उसके बाद ये इंसान का जामा जो मिला है, और ये भी अगर मेरे गुरु नहीं मिलता तो फिर मैं 84 लाख जीवन में चली जाती। वो तो चक्र ऐसा है कि जिससे छूटने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। मुझे चक्र से किसी ने छुड़ाया है तो वो मेरे गुरु ने छुड़ाया। मैं गुरु का शुक्राना कैसे अदा करूँ? अब एक तरफ तो प्रभु है, हम इज्जत तो करते हैं, सम्मान तो उसका सब करते हैं, मगर आप देखिए कि उसने तो अपनी मनमानी कर ली, ये सृष्टि रच दी, मुझे अपने आप से जुदा कर दिया। मगर ये गुरु है जिसने जाके मुझे पहले अपने से मिलाया और फिर जाके प्रभु से मिला दिया। गुरु का शुक्राना मैं कैसे कर सकती हूँ कि मैं तो जब भी परमात्मा को सोचती हूँ पहले मैं गुरु का सोचती हूँ, पहले गुरु के आगे शरण आती हूँ, और यही मेरे गुरु की सबसे बड़ी देन है। ये अब एक कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन है। देखिए कितनी खूबसूरती से बयान कर रही हैं, उनका अंदाज़े बयान बड़ा अनोखा है, बड़ा अछूता, और वो कितने प्यार से हमें समझाती हैं कि हमारी ज़िंदगी का अगर मैवर हो तो वो गुरु हो, तभी हमें निजात मिल सकती है इस 84 लाख जीवन। अब कितने अपने अछूते अंदाज से वो समझा रही हैं कि भाई अगर तुमने प्रभु को पाना है तो भाई गुरु पे फिदा हो जाओ, गुरु पे कुर्बान हो जाओ, गुरु में मिट जाओ, गुरु में अपने आप को खो दो, आलमे खबर से आलमे बेखबरी में आ जाओ, तो तब आपको परमात्मा मिल सकता है, और यह गुरु की देन है, गुरु के जरिए मिल सकता है। किसी ऐसे महापुरुष के चरणों में जाओ, किसी ऐसे वली अल्लाह के चरणों में जाओ, किसी ऐसे मुर्शिदे कामल के पाए अक़दस में जाओ। इसी बात के लिए वो हमें अपने अंदाज में ये सबक दे रही हैं। कितना छूता अंदाज है, कितना प्यारा अंदाज है उनका।
हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने ले छुटाए अनाथा।
और फिर ये अब कितने अंदाज में कहती हैं कि भाई गुरु ने हमें, परमात्मा ने हमें क्या दिया? पहले तो अपने आप से अलादा कर दिया, फिर 84 लाख जिया जून में हमें भटका दिया, और फिर यही नहीं कहा कि चलो हमने किसी बंजर जगह पे, एक शमशान जगह पे, एक सहरा पे हमने हमें पटक दिया, उसके 4-5 चोर और लगा दिया हमारे साथ। अब ये देखिए, ये अब गुरु की कृपा है एक तरफ, एक तरफ प्रभु का करना है, प्रभु का खेल है, अछूता खेल है, न्यारा खेल है। उसने जो कुछ किया वो सही किया, मगर व्यक्तिगत तौर पे उस मुझ पर क्या असर है कि अगर खाली कहीं सहरा में छोड़ देते, कहीं जंगल में छोड़ देते, बियाबान में छोड़ देते, किसी ऐसे जजीरे पे छोड़ देते, तो कोई सूरत थी कि मैं चलूँ जाऊँ? फिर 5 डाकू लगा दिए हर वक्त साथ कि यही बचने नहीं पाए। ये देखिए कि ये एक तरफ तो परमात्मा के जितने हम पे कर्म हैं उनका जो जिक्र है कि परमात्मा ने हमने क्या क्या मेहरबानियाँ की, और मेहरबानी का लफ्ज़ तो मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अब उनका मुझे जो बयान है उसे अपने लफ्ज़ों में दोहराना है। एक तरफ तो ये प्रभु का करना है, एक तरफ गुरु की दया है। तो प्रभु ने एक तो हमें अपने आप से अलहदा कर दिया, हर प्रकार के हमें दुख दिया, फिर कहने का 5 डाकू लगा दिया कि हम कहीं रास्ते अपने पे सीधे चले ही नहीं। अब वो तो जब देखता है वो तो आनंद लेता है कि ये मज़े में तड़प रहा है। और यही शायरी का अंदाज़ है कि जब जो महबूब होता है, जब आशिक तड़पता है, जब वो सिसकता है, बिलकता है, जब उसकी आँखों से खून के आंसू बहते हैं, जब उसका दिल जो है पारे की तरह से लरजता है हर लम्हा हर घड़ी, तो आशिक तो खुश होता है। तो देखिए ये प्रभु का करना है, ये प्रभु ने तो हमें इस मुसीबत में डाल दिया, और फिर 5 चोर हमारे साथ लगा दिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब आप देखिए कि कौन सा है जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचा है, और हमारी तो ऐसी बेबसी का आलम है कि हम इससे बच ही नहीं सकते, छूट ही नहीं सकते। जब चाहती है हमें आँख की इंद्री खींच के ले जाती है जब चाहती है, कान की इंद्री खींच के ले जाती जब चाहती है, नाक की इंद्री खींच के ले जाती है। हम स्वाद के तो हम सभी वशीभूत हो जाते हैं, और स्पर्श की इंद्री ने तो बड़े बड़े महात्माओं को, संतों को, ऋषियों मुनियों को, उन्होंने अपने पांव पे खड़ा नहीं होने दिया। हम किस बाग की मूली हैं? अब ये है जो हम पे प्रभु ने कृपा की, बहुत कृपा की, पे तेरा भाना मीठा लगे वो तो ठीक है, मगर अब जब हम इतनी मुश्किलात हैं तो इसमें हमारा किसने साथ दिया? हम वापस अपने देश को चले जाए, ये जो धाम हमारा नहीं है इससे ऊपर जाए, स्वामी जी ने जैसा कहा है हम अपने धाम की तरफ चले। ये तो मटीरियलिज्म को दुनिया है, भौतिकवाद की दुनिया है, मादी दुनिया है, इससे हम अपनी जो जावेदानी लाफानी जो अमर हमारा स्थान है हम वहाँ पहुँच जाएँ, ये तो गुरु की देन है। और हमारे हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज तो बड़ी खूबसूरती से बयान किया करते थे कि जिस की एक इंद्री जो हो वो जोर वाली हो वो उसका नाश कर देती है। आँख की इंद्री है, देखिए क्षमा को आप देखिए, अब परवाना है, आँख की इंद्री बड़ी प्रबल है, वो अपने आप को जाके उसमें खाक कर देता है। कान की इंद्री है, शाम देख लीजिए कितना जहरीला जानवर है, और ये आजकल की हिस्ट्री, ये साइंस वालों ने हमें बताया है कि जितनी सांप के काटने से मौतें होती है उसमें से 90% उसकी दहशत से होती है, मगर जब बिन की आवाज़ सुनता है तो अपना सर रख देता है। हिरन है, कैसे उछलता है कूदता है आज़ादी से, मगर जब ढोल की आवाज़ आती है तो अपना सर रख देता है। हिरन या तो किसी के घर में पहुंच जाता है या फिर वो आमतौर पर किसी न किसी जू में पहुंच जाता है, और इसी तरह से शाम जो अपना जीवन पटारी में गवा देता है, और इसी तरह से जो नाक की इंद्री है ये भौंरे की इंद्री है, बड़ी प्रबल है, रात को जब खुशबू होती है फूल की तो वो फूल में बैठ जाता है, रात को फूल जो है वो बंद हो जाता है, सांस घुट जाता है, मर जाता है। जायके की इंद्री है, तो मछली देखिए कितनी फुर्ती से तेज़ी से आज़ादी से पानी में घूमती है, मगर जब शिकार करने वाला अपनी कुंडी में कोई या तो आटे का टुकड़ा लगा देता है या मांस का लगा देता है तो उस पर वो अपनी ज़बान मारती है, उसके हलक में वो अटक जाता है और पानी का बगैर तड़ तड़ तो मर जाती है। और स्पर्श की हिंदी तो हाथी कहते हैं कितना बलवान है, जंगल के जंगल वो उखाड़ के फेंक देता है, मगर जो हाथी का शिकार करते हैं वो हथनी का एक उसका सांचा बना लेते हैं, वो एक बहुत बड़ा गड़ा खोदते हैं उसके ऊपर कैमोफ्लेज कर लेते हैं, उसके ऊपर वो पेड़ रख देते हैं, और ऐसा लगता है दूर से कि वैसे जैसे ज़मीन है वैसे ज़मीन है, उस पर एक हथनी का वो बुत बना के खड़ा कर देते हैं, वो अपने स्पर्श के वेग में आता है और वो कूद जाता है उसमें, उसे पता नहीं होता कि मेरे लिए ये तो मौत का सामान है, और वहीं वो कई महीनों के लिए उसी खाई में रखा जाता है, उसे ना कुछ खाने को दिया जाता है, आखिर में उसे डाल लिया जाता है। और हम देखते हैं कि वही हाथी जब शहरों में आता है तो उसमें हम दो दो चार चार रुपये दे कर सवारी करते हैं, वो हमारी नुमाइश का हमारी सवारी का एक सामान बन जाता है। तो हमारे हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज बड़ी खूबसूरती से बताया करते थे कि जिसकी एक इंद्री बलवान हो उसका ये हशर है, वो इंसान बेचारा जिसकी पाँचों इंद्रियाँ बलवान उसका क्या हशर हो। तो ये पाँच ये तो इंद्रियों हमें बख्शती हैं, और फिर पांच डाकू बख्शती है, और जो गुरबानी में आया है कि हमारे अंतर हर वक्त जो है वो अमृत चो रहा है, और हमने वो पीना है, मगर हमारी जगह पांचों जो हमारे डाकू में वो पी रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और इस संसार में सबके सब सोए हैं, हमारा भाई भी सोया है, बाप भी सोया है, बहन भी सोई है, माँ भी सोया है, दोस्त भी सोए हैं, अब खुफ्ता रहा खुफ्ता क्या कुनभ्यता कि सोए को सोया कैसे जगा सकता है। ये तो प्रभु की देन है ना कि सबको सब सुला दिए, सबके सब माया के चक्कर में सो रहे हैं, अब कोई जागता पुरुष आए वो आके हमें आवाज़ दे तो तभी हम उठे। वही जागता पुरुष जो है जो हमारा सदगुरु होता है, एक ही जागता पुरुष होता है सारे संसार में। हम तो सब सोए होंगे। हमारी हिस्ट्री में बहुत सी कहानियाँ आती हैं सोने की। रिप वैन विंकल की कहानी आती है और कई कहानियाँ आती हैं। बहुत देर तक लोग सोए रहते थे, मगर जितना इंसान सोता है इतना कोई नहीं सोता। हम तो सबके सब सोए हुए हैं जैसे गुरबानी बताती। और जो जागृत पुरुष होता है वो एक ही होता है संसार में, वो गुरु होता है, वो मुर्शिद कामिल होता है। और वही हमें आवाज़ दे तो हमें अपनी ये जो नींद है, इतनी लंबी नींद है, इतनी भयानक नींद है, इसे वही जगा सकता है। तो यही अपनी खूबसूरती से, अपने अंदाज से बता रही हैं कि देखो प्रभु की क्या आचरण लीला है, क्या अपार लीला है। कि एक तरफ तो उसने 5 डाकू हमें दे दिए, दुनिया में बेच दिया, और फिर उसके आगे और फंदा डाल दिया कि 5 डाकू ये हैं, हर वक्त हम पे ये नज़र रखते हैं, कड़ी नज़र रखते हैं कि हम उनके कब्ज़े से कहीं भाग नहीं जाए। और मेरे गुरु की क्या कृपा है, उसकी क्या देन है, उसकी क्या मेहरबानी है, उसकी क्या अनायत है कि वो 5 डाकुओं से मुझे बचाता है, उनसे बचा कर फिर मुझे अपने रास्ते पर डाल देता है और मुझे ऐसी अवस्था में ले आता है, ऐसी मंजिल पर ले आता है कि यहाँ उन डाकुओं में से किसी का बस नहीं चलता। वो डाकू तो उससे बहुत नीचे रह जाते हैं। डाकुओं की जहाँ तक अमलदारी है उससे बहुत दूर एक नए संसार में, एक नए रेल्म में मुझे ले जाता है, एक नई मंजिल में ले जाता है जो कि इन डाकुओं की पहुँच से बाहर है। तो कितनी दया है, कितनी कृपा है अपने गुरु। अब वो अपने एक बड़े मुअस्सर अंदाज में एक तरफ तो जो प्रभु ने रचना की है उसका जिक्र करते जाते हैं और दूसरी तरफ जो गुरु कृपा करता है उसका जिक्र करते जाते हैं।
हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने ले छुटाए अनाथा।
और गुरु ने मुझे वो 5 चोरों से बचा लिया। कैसे बचा लिया? गुरु ने कैसे मुझ पर कृपा की कि उसने मुझे ये देख लिया कि मैं तो अनाथ हूँ, मैं तो निओटी हूँ, मेरी कोई ओट नहीं है, मैं तो निआसरा हूँ, मेरा कोई आसरा नहीं, मेरा कोई नाथ नहीं है, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं तो इन चोरों के बस में पड़ गई हूँ। और ये गुरु की कितनी कृपा है कि जो निओटियों की ओट होता है, जो निआसरों का आसरा होता है। तो ये मेरे गुरु की महानता है और मैं बार बार अपने गुरु को नमस्कार करता हूँ। तो ये जो शब्द है इससे एक ही बात जिसे एम्फेसाइज किया है वो ये है कि गुरु के समान कोई मेहरबान नहीं। और गुरु तो मुजस्सम मेहरबानी है, मुजस्सम इशार है, कुर्बानी है। क्योंकि सदगुरु और ऐसी महापुरुष हस्तियाँ जब भी संसार में आती हैं वो तो दूसरों के लिए आती हैं, वो तो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने के लिए आती हैं, असत से सत की तरफ ले जाने के लिए आती हैं। अब असल में वो जो बयान कर रही हैं वो तो गुरु की महत्ता कर रही हैं। ये तो अंदाज है उनका के साथ साथ वो जो सृष्टि जैसे प्रभु ने रची है वो भी उन्होंने साथ ले लिया एक अंग, और एक गुरु की महत्ता बयान करती जाती हैं। उनका तात्पर्य यही है कि हम अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखें, पूर्ण विश्वास रखें। क्योंकि जितनी ये हमारी मुसीबतें हैं अगर उनका कोई हल करने वाला है तो वो गुरु है। अगर ये जो जुदाई की हमारी लंबी दास्तान है, दुख भरी दास्तान, अगर इसे कोई ख़त्म करने वाला है और हमारा स्वाग कायम करने वाला है तो वो है हमारा सदगुरु। क्योंकि जब तक सदगुरु हमें अपने चरणों में नहीं बुलाता, जब तक हमारा सदगुरु हमसे खुद प्रेम नहीं करता, क्योंकि इश्क बड़ दिल मशूक पैदा में, जब तक वो हमारे जितने गुनाह हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं करता, जब तक हम गुनाहों में लिथड़े हुओं को वो अपनाता नहीं है, देखिए कितनी महानता है, तब तक ये हमारी जो ज़िंदगी का ध्येय है ये पूरा नहीं होगा। इसलिए हमारी ज़िंदगी का आज भी गुरु होना चाहिए, अंत भी गुरु होना चाहिए। और इसीलिए हमारे हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज हमेशा यही फरमाया करते थे, ए लिविंग मास्टर इज़ ए ग्रेट ब्लेसिंग, बहुत बड़ी बरकत है। हम लफ्ज़ों में उसे अदा नहीं कर सकते कि वो हम पे कितना कर्म करता है, कितना रहम करता है, कितनी अनायत करता है, कितनी नवाजिश करता है, कितनी मेहरबानी करता है। हम तो सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं, और ये ज़िंदगी में हमारी बहुत कमी है कि हम तो शुक्राना भी नहीं करते। ये देखिए किस अंदाज में शुक्राना कर रहे हैं, अंदाज देखिए, और देखिए कि कितने ये लोग निडर होते हैं। जो प्रभु को मानने वाले हैं वो किसी से डरते नहीं हैं। अब अंदाजे बयान जो है, कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी कि प्रभु की और गुरु की तुलना कर रही, और तुलना में गुरु को सब कुछ कहा, गुरु को अपना जान भी कहा, प्राण भी कहा, जान की जान भी कहा, अपनी ज़िंदगी का आद भी कहा, अंत भी कहा, सब कुछ कहा। तो इससे जो तात्पर्य है वो यही है कि हम अपने गुरु के चरणों में पूरी पूरी श्रद्धा रखें, हम अपने गुरु का जो भी हुक्म वो माने उसमें हम अपनी बुद्धि को दखल नहीं देने दें, क्योंकि यही इसे इन्होंने पहला अपना ये शब्द शुरू किया है कि मेरी तो जो बुद्धि थी वो तो बड़ी सीमित थी, अब मैं बुद्धि की सौटी पे अपने गुरु का जो फरमान है उसे तो नहीं मैं जान सकती, क्योंकि जब बुद्धि सीमित है तो वो कसौटी कैसी हो सकती है एक ऐसी चीज़ के लिए जो कि असीम है, जो लिमिटलेस। तो हमें अगर रूहानियत के रास्ते में तरक्की करनी है, अगर हम जो चाहते हैं कि हम प्रभु में लीन हो जाएं, प्रभु को पा जाएं, तो उसका एक ही गोल्डन प्रिंसिपल है, धर्मीय असूल है, सुनहरी उसका एक ही असूल है, और वो ये है कि हम अपने गुरु को अपना आज भी समझें, अंत भी समझें, गुरु के चरणों में अपनी अगाध श्रद्धा रखें, क्योंकि गुरु ही है जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है, गुरु ही है जो हमें सब बंधनों से छुड़ा सकता है, गुरु ही है जो हमें सब हदों से पार ले जा सकता है, गुरु ही ऐसी हस्ती है जो हमें अपने ऐसे संसार में ले जा सकता है कि जहाँ अक्खी बाजो देखना बिन करना सुनना, हथों बाजो करना बिन पैरा चलना, जीभे बाजो बोलना यूं जीवत मरना, नानक हुकुम छान के यूं खसमे मिलना। इसी का मैंने उर्दू तर्जमा किया था कि बगैर आंख के देख उसके जलवाधारों को, बगैर कान के सुन उसकी राय बाना सदा, बगैर पाँव के चल उसकी राय गुजारों में, बगैर हाथ के हर काम कर उसी के लिए, बगैर हरफो ज़बा उससे गुफ्तगू कर ले। इसी तरह से अगर जीते जी मरेगा तू, इसी तरह से अगर उसका हुक्म मानेगा, खुदा का औज बहद्दे कमाल पाएगा, तो बंदा होकर खुदा का वसाल पाएगा। तो यही एक तरीका है कि हम अपनी पूरी श्रद्धा रखें, पूरा विश्वास रखें गुरु, क्योंकि गुरु ही हमें मुक्ति के देने वाला है, गुरु ही हमारे सख दुखों और दर्दों को दूर करने वाला है। और इसलिए हम अपने सद्गुरु के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं।